18 जनवरी दिन भर दिन सोमवार, मैं हूं रेहान फदल। हैदराबाद विश्वविद्यालय में एक दलित छात्र की आत्महत्या पर मचा बवाल।
The students suffer from the, they are socially boycotted from there. So why, what is the social boycotted means?
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात। ब्रिटेन में लाखों पाउंड खर्च किए जा रहे हैं मुस्लिम महिलाओं को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए।
This is about building a more integrated, cohesive, one-nation country where there's genuine opportunity for people. Because, of course, if you don't speak the language, your opportunities are very much reduced.
होंगे आपके पत्रों के उत्तर भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या के मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री बंडारू दत्तात्रेय के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तेलंगाना पुलिस ने बंडारू दत्तात्रेय के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। दत्तात्रेय के अलावा हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलपति और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ भी SC/ST एक्ट और अन्य धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। दलित समुदाय के 5 छात्रों को हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी हॉस्टल से निकाले जाने के खिलाफ छात्र विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ आंदोलन चला रहे थे, जिसके बाद PhD के छात्र रोहित वेमुला ने आत्महत्या कर ली थी। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ हाल ही में किए गए मिसाइल परीक्षण को देखते हुए नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। नए प्रतिबंधों के तहत ईरानी मिसाइल कार्यक्रम से जुड़ी 11 संस्थाएं और लोग अमेरिकी बैंकिंग तंत्र का उपयोग नहीं कर पाएंगे। ईरान ने अमेरिका के इन प्रतिबंधों का विरोध किया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के हुसैन जाबेरी अंसारी ने कहा कि अमरीका के पास ऐसा करने का कोई नैतिक या कानूनी आधार नहीं है। हुसैन जाबेरी अंसारी ने कहा,
بهانه‌گیری علیه برنامه موشکی دفاعی و بازدارنده ایران توسط آمریکا
ایران کے میزائل رکشا تنتر اور دھمکانے والی نیتی کا جو ذکر امریکہ کرتا ہے وہ خود अरबों डॉलर के अत्याधुनिक हथियार इस क्षेत्र के कई देशों को बेचता है। इन हथियारों का इस्तेमाल पारंपरिक रूप से फलस्तीन और लेबनान के खिलाफ होता रहा है। यमनी नागरिकों के खिलाफ भी इन हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में अमेरिका के पास कोई कानूनी या नैतिक तर्क नहीं है कि वो ईरान पर प्रतिबंध लगाए। ईरान के मिसाइल तंत्र का परमाणु हथियारों से कोई लेना देना नहीं है। ये थे ईरान के विदेश मंत्रालय के हुसैन जाबेरी अंसारी के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व सेना अध्यक्ष परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान की चरमपंथ विरोधी अदालत ने बलूच नेता नवाब अकबर खान बुगटी की हत्या के मामले में बरी कर दिया है। बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा की अदालत ने परवेज मुशर्रफ के अलावा प्रांत के पूर्व गृह मंत्री मीर शोएब नौशेरानी और कौमी वतन पार्टी के अध्यक्ष और नेशनल असेंबली के सदस्य आफताब अहमद खान शेरपाओ को बरी कर दिया है। डॉन अखबार के मुताबिक जामिल बुगटी के वकील सुहेल राजपूत ने कहा कि वे अदालत के फैसले को चुनौती देंगे। मुशर्रफ पर पिछले साल जनवरी में इस मामले में चार्जशीट दायर की गई थी। बलूचिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री अकबर बुगटी की 2006 में एक सैन्य ऑपरेशन में मौत हो गई थी। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि सीरिया के मदाया शहर में भूख से 5 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि पिछले हफ्ते शहर में राहत के लिए खाने पीने का सामान भिजवाया गया था। अधिकारियों ने कहा है कि खाने पीने के सामान पहुंचने से पहले शहर में 20 लोगों की मौत हो चुकी थी। BBC समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। हैदराबाद विश्वविद्यालय में कैंपस के अंदर हॉस्टल के कमरे में PhD के एक दलित छात्र द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने से कई छात्र संघों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। दलित छात्र खुदकुशी मामले में मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि 2 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम इस मामले में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। हैदराबाद विश्वविद्यालय के परिसर में छात्रों का जमावड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। पुलिस की संख्या भी बढ़ा दी गई है। इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
रोहित वेमुला ने खुदकुशी के पहले जो खत लिखा है उसमें बहुत कुछ है। खत में उनके अरमान हैं, उनका दुख भी है। सबसे महत्वपूर्ण उनकी चिट्ठी से पता चलता है कि भेदभाव का क्या असर पड़ता है किसी नौजवान पर। लेकिन क्या यही वजह हो सकती है एक केंद्रीय मंत्री के खिलाफ यह इल्ज़ाम लगाने के लिए कि उन्होंने आत्महत्या अप्रेरण किया है। उस्माना यूनिवर्सिटी के अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मट्टा कृष्णा कहते हैं,
द स्टूडेंट्स सफर फ्रॉम द दे आर सोशली बॉयकॉटेड फ्रॉम द सो व्हाई व्हाट इज द सोशल बॉयकॉटेड मींस।
उनकी मौत हुई हीनता के भावनाओं से। उन्होंने स्कूल से लेकर अभी तक बहुत भेदभाव महसूस किया था और यूनिवर्सिटी से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। यह सारा मामला हुआ है बंदारू दत्तात्रेय की वजह से। पिछले अगस्त में उन्होंने कहा था कि अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन एक जातिवादी, आतिवादी और राष्ट्रीय विरोधी है। उनकी आत्महत्या का मूल कारण वही है। ये थे मट्टा कृष्णा के शब्द। यह सच है कि दत्तात्रेय ने उनके सहयोगी और एचआरडी मंत्री स्मृति ईरानी से यह इल्ज़ाम अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन पर लगाया था। उनकी चिट्ठी का कारण था कि अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के सदस्यों ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या एबीवीपी के नेता के साथ हाथापाई की थी। उसकी वजह यह थी कि एबीवीपी के नेता ने एएसए यानी अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के सदस्यों की प्रतिक्रिया की थी जब उन्होंने याकूब मेमन की फांसी देने के खिलाफ प्रदर्शन किया था। लेकिन दत्तात्रेय के चिट्ठी के फौरन बाद एचआरडी मंत्रालय ने एक जांच रिपोर्ट यूनिवर्सिटी से मांगी। उस रिपोर्ट में छात्रों को दोषी ठहराया गया और उनके सस्पेंशन की सिफारिश की गई। छात्रों ने उसका विरोध किया तो उनका सस्पेंशन रद्द कर दिया गया। जब नए वाइस चांसलर अपराव पिंडले ने चार्ज लिया तो उनको कहा गया कि स्टैट्यूटरी बॉडी के निर्णय को नहीं बदल सकते हैं। अपराव पिंडले कहते हैं,
वो हॉस्टल से सस्पेंशन हुआ था वो लोग। वो इसका हिस्ट्री ऐसा है, जब मैं नए था वाइस चांसलर अगस्त में, उन लोगों का दो स्टूडेंट ग्रुप के बीच में आपस में झगड़ा हुआ था। उसका प्रोफेसोरियल बोर्ड ने इंक्वायरी किया था दोनों तरफ से और रिकमेंडेशन सबमिट किए थे यूनिवर्सिटी को। यूनिवर्सिटी जो प्रोफेसोरियल बोर्ड रिकमेंडेशन के बेसिस के ऊपर उन लोगों को यूनिवर्सिटी से सस्पेंड किया गया था। वो यूनिवर्सिटी से सस्पेंड करने के बाद स्टूडेंट एजिटेट किए थे और एडमिनिस्ट्रेशन को बंद किया था एक दो दिन, इसलिए वो वाइस चांसलर साहब जो थे उसको रिवोक भी कर दिया था। रिवोक कर लिया और इसमें बोला कि दूसरा कमेटी देखेंगे इसके बारे में।
पिछले दो हफ्तों से धरना करने के बाद रोहित ने रविवार को उनके दोस्त के हॉस्टल रूम पर आत्महत्या कर लिया। उनके आत्महत्या के बाद उनके दोस्तों ने उनकी शव को सारी रात रास्ते पर ही रखा था। पुलिस ने आज छात्रों को गिरफ्तार किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शाम को एएसए के सदस्य उनके रोहित के लिए रैली करने की तैयारी कर लिए थे। लेकिन क्या इस तरह के मामले किस तरह संभाले जाते हैं? हमने दलित विषयों के एक्सपर्ट और इसी यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर कांचा इलाया से पूछा। उन्होंने कहा, यहाँ के छात्र बहुत ही प्रतिभावान होते हैं, शायद इसीलिए वह बहुत ही जोर से पेश आते हैं और सवम जाति के छात्र उनका प्रतिरोध करते हैं। इसीलिए यूनिवर्सिटी को अतिरिक्त सावधान से संभालने की जरूरत है। ये थे प्रोफेसर कांचा इलाया के शब्द। इस मामले के बाद राजनीति शुरू ही हो गई। कांग्रेस का इल्जाम था कि बीजेपी सरकार किस तरह दलितों के मामलों को छेलती है, लेकिन ये बात स्पष्ट हो रही है कि दलित छात्र आजकल अपना हक मांगने के लिए संकोच नहीं करते हैं। बेंगलुरु से इमरान कुरैशी।
हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पीएचडी छात्र रोहित वेमुला की खुदकुशी का मुद्दा अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय और यूनिवर्सिटी के वीसी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है। पूरे मामले को लेकर हैदराबाद से दिल्ली तक राजनीति भी शुरू हो गई है। इसे लेकर हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने दलित चिंतक चंद्रभान प्रसाद से बात की और सबसे पहले पूछा कि इस पूरे मामले को वो किस तरह से देख रहे हैं।
खुदकुशी तो कह सकते हैं, पर आप उस नौजवान के जो सुसाइड नोट है उसको पढ़िए तो ये तो लगेगा कि ये एक तरह से मर्डर ही हुआ है उसका। डेढ़ साल से उसकी फेलोशिप नहीं मिल रही थी और उसको सस्पेंड किया गया, दो दिन कैंपस के बाहर जो है हॉस्टल के बाहर सोया रात को अपने पांच साथियों के साथ, और वो कितना अच्छा इंसान है। उसने कहा है, हम किसी को दोष नहीं देते हैं, हमारे एनिमीज को भी परेशान न किया जाए, और हमने किसी दोस्त से 40,000 रुपया उधार लिया था, उसको पैसा वापस हमारी फेलोशिप से निकाल के दे दिया जाए। साइंस राइटर बनना चाहता था वो, कार्ल सागन का नाम लेते हैं जो महान साइंटिस्ट थे। देखिए, जो 30 साल का नौजवान है वो गांव से आता है, दोनों माता पिता उसके फार्म वर्कर हैं, हमको किसी ने बताया है वो तो भूखी माँ के पेट में पैदा हुआ था। उसके सुसाइड नोट को देखे तो कितना वो महान एक उसमें एक राइटर छिपा हुआ था। तो थोड़ी सहानुभूति रखनी चाहिए थी समाज को, यूनिवर्सिटी कैंपस को, वाइस चांसलर को। मैं तो कहूंगा ही वाज लेट टू कमिट सुसाइड।
जिस तरह से ये मामला सामने आया है खुदकुशी के बाद, उसके पहले कोई सक्रियता नहीं थी, आप ये मानते हैं कि क्या पहले इतनी गंभीरता दिखाई जाती तो रोहित वेमुला को बचाया जा सकता था?
बिल्कुल बचाया जा सकता था। वहाँ पर है, IITs में होता है, एम्स में होता है, कई बार तो हो सकता है दलित नौजवानों से भी गलती हो। पर अभी इनका अतीत देखिए, पिछले 30-40 साल पहले तक लोग कितनी मुसीबत में से निकल के आए हैं, तो थोड़ी एम्पैथी रखनी चाहिए समाज को। अभी देखिए जून में जो है दो दलित भाई IIT को क्रैक किए जेई जनरल कैटेगरी में, और मुख्यमंत्री ने उनको दिन में इनाम दिया लखनऊ में, शाम को उनके घर पर गांव वालों ने पथराव किया। तो ऐसी स्थिति आज के हालात हैं, तो जो कैंपस में आ रहे हैं तो थोड़ा उनके प्रति एक सहानुभूति की दृष्टि रखनी चाहिए प्रशासन को।
इस पूरे मामले में विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर और एक केंद्रीय मंत्री के खिलाफ भी FIR हुई है और राजनीति भी इस पर शुरू हो गई है, इसे आप किस तरह से देखते हैं?
राजनीति तो दुर्भाग्यपूर्ण है, और केंद्रीय मंत्री के खिलाफ कोई FIR हो ये मुझे ज्यादा कुछ समझ में आता नहीं कि ये कोई अच्छी बात है। पर लोकल लेवल पर जो लोग रिस्पॉन्सिबल है इमीडिएट उनके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए और अरेस्ट होना चाहिए।
छात्र राजनीति और दो छात्र संगठनों के टकराव की बात भी सामने आ रही है, आपको क्या लगता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन इस पूरे मामले को सही तरीके से सुलझा नहीं पाया?
हमें तो ऐसे ही लगता है। देखिए हर हम भी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, आप भी पढ़े हैं यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी में तमाम तरह के संगठन होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, झगड़े होते हैं, कई बार मारपीट भी होती है, लेकिन प्रशासन की जिम्मेदारी है कि दोनों पक्षों को ठीक से हैंडल करे। यहाँ पर विश्वविद्यालय के प्रशासन की तरफ से मुझे चूक स्पष्ट दिखाई पड़ती है।
चंद्रवान प्रसाद जी, आप एक चिंतक भी हैं, ये घटना जिस तरह से हुई, आपको क्या लगता है कि इस मामले से क्या कोई सबक मिलते हैं?
उस लड़के का सुसाइड नोट मैं पढ़ा अभी एक घंटे पहले, मतलब कितनी मार्मिक एक दृश्य पैदा होता है। वो बोलता है मैं तारों को छू लेना चाहता हूँ, मेरी आत्मा मेरी बॉडी में डिस्कनेक्ट होता जा रहा है, मानवता भरा वो मार्मिक पत्र है। हमें फ्यूचर में इस तरह का देखना होगा कि कोई एकदम गरीब घर से गांव से गुंटूर जिले से आता है, वो गुंटूर केवल गरीबी और लाल मिर्च के लिए जानी जाती है, और जो है उसके साथ इतनी सख्ती से पेश आएंगे, और तो कोई भावुक आदमी होगा और एकदम ईमानदार होगा तो सुसाइड कर लेगा।
चंद्रपान प्रसाद से बात कर रहे थे वात्सल्य राय। भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। इससे पहले कल वो फिलिस्तीनी नेताओं से बातचीत कर चुकी हैं। उनकी इस यात्रा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित इसराइली यात्रा की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। मैंने थोड़ी देर पहले यरूशलम फोन कर स्थानीय पत्रकार हरिंदर मिश्रा से बात की और पूछा कि आज सुषमा स्वराज का क्या कार्यक्रम रहा इसराइल में।
जी, उनकी मुलाकातें तो अभी भी जारी हैं, लेकिन आज सुबह उनकी मुलाकात इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से हुई और उसके बाद फिर इसराइली राष्ट्रपति रूवेन रिवलिन के साथ भी उनकी मुलाकात हुई। इन मुलाकातों के दौरान यहाँ पर अभी जो हालात बने हुए हैं उसका खासा जिक्र हुआ, और यहाँ पर सुषमा स्वराज ने कहा कि भारत आतंकवाद का विरोध करता है, हर तरह के आतंकवाद का विरोध करता है, और जो इसराइलियों पर हाल फिलहाल जो हमले हुए हैं और खास करके कल का जो हमला हुआ है जिसमें एक 38 वर्ष की महिला अपने बच्चों के सामने मारी गई है, उसको उन्होंने कंडेम किया है और कहा कि चूंकि इसराइल और भारत के दरमियान आतंकवाद के मामले पर पहले से ही दोनों पक्ष एक दूसरे का सहयोग करते रहे, तो उनकी जब आपसी बातचीत हुई तो यहाँ पर उस बातचीत के दौरान मौजूद जो कुछ अधिकारी थे उनका कहना था कि क्षेत्रीय राजनीति की भी चर्चा हुई और इस बात पे चर्चा हुई कि यहाँ पे आतंकवाद जो है वो किस तरह से इसराइल को पीड़ित कर रखा है और किस तरह से भारत के भी इर्द गिर्द के जो इलाके हैं वहाँ पर आतंकवाद का भारत के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, और इसके अलावा इस दोनों ही देशों के बीच कई तरह के जो ये रिश्ते हैं वो व्यापार के भी क्षेत्र में है और व्यापार के क्षेत्र में संबंधों को और मजबूत करने की बात की गई, खास करके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जल्द वो समझौता जो है उसको जल्द तय करने की भी बातचीत हुई है।
प्रधानमंत्री मोदी भी निकट भविष्य में इसराइल जाने वाले हैं, उसको लेकर क्या बज है वहाँ पर?
देखिए यहाँ पर ये माना जा रहा है कि सुषमा स्वराज का जो ये दौरा है ये दरअसल एक तरह से तैयारी है नरेंद्र मोदी साहब के यात्रा की, और यहाँ पर इसको लेकर के खासी वहाँ चर्चा भी होती रही है, यहाँ के मीडिया में भी, यहाँ के सरकारी जो है दफ्तरों में भी इसकी काफी चर्चा रही है। कुछ लोगों का ये मानना है कि हो सकता है कि अगले साल जब भारत और इसराइल अपने कूटनीतिक संबंधों का 25वां सालगिरह मनाए तो हो सकता है मोदी उस समय आए, लेकिन यहाँ पर फिर भी ज्यादातर लोगों का अभी भी ये मानना है कि मोदी का जो दौरा है वो इसी साल शायद हो। अगर उनका दौरा इस साल नहीं होता है तो इसराइली प्रधानमंत्री और इसराइली राष्ट्रपति भारत का दौरा निश्चित करेंगे।
फिलिस्तीन के नेताओं से भी सुषमा स्वराज की मुलाकात हुई है, वहाँ से क्या खबर है?
कल फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास और फिलिस्तीन के विदेश मंत्री रियाद अल मलिकी से उनकी मुलाकात हुई और उन दोनों नेताओं को सुषमा स्वराज ने आश्वस्त करने की कोशिश की कि भारत की जो नीति है पश्चिम एशिया में उसमें किसी भी तरह की कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और जिस तरह से भारत हमेशा फलस्तीनियों का समर्थन करते आया है और खास करके फलस्तीनियों का के जो जायज मांग है उनका समर्थन करते आया है वो आगे भी जारी रखेगा और उसमें किसी तरह कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। दूसरी तरफ फलस्तीनियों ने दरअसल ये कहा कि भारत को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए यहाँ के मध्य पूर्व शांति वार्ता में और उन्होंने ये भी कहा कि भारत जो है उसका एक अपना कद है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में और उसका इस्तेमाल करते हुए उसे यहाँ पर भी एक तरह का रोल प्ले करना चाहिए।
ये थे यरूशलम से स्थानीय पत्रकार हरिंदर मिश्रा।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। ब्रिटिश सरकार ब्रिटेन में रहने वाली मुस्लिम महिलाओं को अंग्रेजी सिखाने की तैयारी में है। सरकार इसके लिए 2 करोड़ $80 लाख से अधिक रकम खर्च करेगी। प्रधानमंत्री डेविड कैमरन का कहना है कि इस योजना का मकसद समाज को जोड़ना और अतिवाद का मुकाबला करना है। कैमरन का कहना है कि अंग्रेजी न सीखने की स्थिति में महिलाओं के वीजा की अवधि न बढ़ाने का भी फैसला लिया जा सकता है। वहीं मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों का कहना है कि अंग्रेजी न आने को अतिवाद से जोड़ना ठीक नहीं है। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे के सार के साथ वात्सल्य राय।
ब्रिटेन में रहने वाली मुस्लिम समुदाय की जो महिलाएं अंग्रेजी में बातचीत नहीं कर पाती हैं उनके लिए ब्रिटिश सरकार नई पहल करने जा रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन का कहना है कि इसका मकसद समाज को जोड़ना और अतिवाद का मुकाबला करना है। कैमरन का कहना है कि ब्रिटेन को उदारवादी मूल्यों के प्रति और अधिक आग्रही बनाना होगा। मुस्लिम महिलाओं को अंग्रेजी सिखाने के लिए 2 करोड़ पाउंड यानी करीब $2 करोड़ $80 लाख की रकम खर्च की जाएगी। कैमरन ने द टाइम्स अखबार में लिखे एक आलेख में आरोप लगाया है कि मुस्लिम समुदाय के पुरुषों में से कुछ ने इस समुदाय की हजारों ऐसी महिलाओं पर नियंत्रण किया हुआ है जो अंग्रेजी नहीं बोलती हैं। कैमरन ने कहा कि हालांकि अंग्रेजी न आने और अतिवाद के बीच कोई सहज संबंध नहीं है, लेकिन अंग्रेजी सीखकर समुदाय का रुख ज्यादा लचीला हो सकता है। कैमरन ने बीबीसी से कहा कि ये बदलाव का वक्त है।
This is about building a more integrated, cohesive, one-nation country where there's genuine opportunity for people.
कहीं ज्यादा एकजुट करने की कोशिश है जहां लोगों के पास वास्तविक अवसर होंगे। अगर आप इस भाषा में बातचीत नहीं करते हैं तो आपके अवसर काफी हद तक कम हो जाते हैं। समुदायों के बीच हमें तलाश करनी है, कहां सबसे ज्यादा मदद की जा सकती है। इसके बाद उन्हें मदद के लिए संसाधन मुहैया कराने हैं। साथ ही हमारे देश में आने वाले लोगों से ये भी कहना है कि अंग्रेजी सीखना जरूरी है। यहाँ आने के लिए अंग्रेजी जरूरी है और यहाँ रहने के लिए अंग्रेजी में सुधार करने की जरूरत है।
डेविड कैमरन के शब्द। सरकार का कहना है कि ब्रिटेन में रहने वाली मुस्लिम महिलाओं में से 22% या तो अंग्रेजी नहीं बोलती हैं या बेहद कम बोल पाती हैं। इसे उनके अलग थलग रहने की वजह माना जाता है। नए नियमों के मुताबिक अक्टूबर से 5 साल के वीजा पर ब्रिटेन आने वालों को 2.5 साल के बाद टेस्ट देना होगा जिसमें परखा जाएगा कि उनकी अंग्रेजी बेहतर हो रही है या नहीं। अगर वो इस टेस्ट में फेल हुए तो उन्हें ब्रिटेन में रुकने की गारंटी नहीं दी जाएगी। सरकार के मुताबिक नागरिकता के लिए आवेदन करने वालों पर भी इसका असर होगा। हालांकि कुछ मुसलमानों ने आरोप लगाया है कि कैमरन दोनों मुद्दों को गलत तरीके से मिला रहे हैं। उत्तरी इंग्लैंड के ब्लैकबर्न में रहने वाली अंग्रेजी की शिक्षक अंजुम अनवार कहती हैं कि मां के अंग्रेजी न बोल पाने की स्थिति में परिवार के अतिवादी होने के बीच कोई संबंध नहीं है। वो कहती हैं
वो अपने तरीके से योगदान दे रही हैं और अगर बच्चों की परवरिश में उनका योगदान सकारात्मक है तो ऐसी कोई बड़ी बाधा नहीं होनी चाहिए। निजी तौर पर मैं मानती हूँ कि अंग्रेजी बेहद जरूरी है। अंग्रेजी हो या फिर चाइनीज, ये एक भाषा है। आपको बातचीत कर पाने के लिए भाषा सीखनी होती है। हालांकि ये जरूरी है, लेकिन जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा है, अतिवाद से इसका मिलान नहीं किया जा सकता।
अंजुम अनवार के शब्द। अंजुम ये भी कहती हैं कि सरकार अपनी पुरानी नीति को बदल रही है। वो कहती हैं,
It's important that the government spends money on education.
ये जरूरी है कि सरकार शिक्षा पर खर्च करे। एक शिक्षक के तौर पर मैं खुश हूँ कि सरकार खर्च कर रही है, लेकिन 2012 में प्रधानमंत्री ने कक्षाएं चलाने के लिए दिए जाने वाले कोष में कटौती की थी। हमने कहा था कि इसका असर महिलाओं पर होगा। ये फैसला महिलाओं को उनके घरों तक सीमित कर देगा, जबकि हम उन्हें बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं।
अंजुम अनवार के शब्द। प्रधानमंत्री कैमरन भी मानते हैं कि पहले प्रवासियों के लिए भाषा की मुफ्त क्लास चलाने के लिए दी जाने वाली रकम में कटौती की गई थी, लेकिन उनका कहना है कि अब ये रकम ज्यादा योजनाबद्ध तरीके से दी जा रही है।
ब्रिटेन में मुस्लिम महिलाओं को अंग्रेजी सिखाने की तैयारी। आज सोमवार है और आज का दिन होता है आपके पत्रों का, आपके शिकवे शिकायतों का समाधान ढूंढ रहे हैं स्वाति बख्शी और राजेश जोशी।
आपकी राय स्वीकार कीजिए। नमस्कार, राजेश जोशी का आज स्टूडियो में मैं हूँ और मेरे साथ हैं,
मैं हूँ स्वाति बख्शी।
स्वाति बख्शी जी, स्वाति जी, शुरुआत कहाँ से कर रही हैं?
शुरुआत तो मैं पोस्टकार्ड से ही कर रही हूँ। जगदीश चोटलिया ने हमें एक पोस्टकार्ड लिखकर भेजा है राजकोट गुजरात से, विवेकानंद नगर शेरी 3 इनका पता है, फिर ये कहेंगे मैंने पढ़ा नहीं,
पूरा पता नहीं पढ़ा। राजकोट गुजरात से, वाह जी, का क्या कहते हैं?
कहते हैं कि वर्षांत कार्यक्रम में जो अचला शर्मा का नाटक था बंधक, वो इन्हें बहुत पसंद आया और इनका सुझाव है कि नाटकों की श्रृंखला आगे चालू रखी जाए।
भाई जगदीश चोटलिया जी, आपने राजकोट गुजरात से हमें चिट्ठी लिखी है और आपकी चिट्ठी से मुझे अंदाजा हो रहा है कि अभी तक वो सिलसिला खत्म नहीं हुआ है जो वर्षांत कार्यक्रमों के बाद शुरू हुआ था, यानी श्रोताओं की चिट्ठियों का जो सिलसिला है वो अब भी जारी है। तो श्रोताओं, हमें ये उम्मीद है कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आए होंगे। जहां तक बात नाटक की श्रृंखला जारी रखने की है, तो अभी तो वो संभव नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं हमारा समाचारों खबरों का कार्यक्रम है। साल के अंत में एक बार हम ये ज़रूर चाहते हैं कि आप बहुत आराम से हमारे कार्यक्रम सुनें, नाटक का, संगीत का मजा लें, लुत्फ लें, वो कोशिश हमारी जारी रहेगी। चोटलिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया चिट्ठी लिखने का, आगे भी लिखते रहिएगा।
राजेश जी, एक और चिट्ठी चौधरी रंगलाल लमोरिया की है, ग्राम नारी झुंझुनू राजस्थान से इन्होंने लिखा है और ये कहते हैं कि बीबीसी हिंदी सेवा का नियमित श्रोता हूँ 1971 से, लेकिन कहते हैं कि बीबीसी का पहले वाला स्तर नहीं रहा, पहले
ये शिकायत जी, अब ये 1970 के दशक की बात अगर करेंगे तो ज़माना बदल चुका है, दुनिया बदल चुकी है, भारत बदल चुका है। उस ज़माने में टेलीविज़न नहीं था, उस ज़माने में सिर्फ बीबीसी था, बहुत सारे, अब ट्विटर है, व्हाट्सएप है, आगे लिखते क्या
है? लेकिन इन्होंने एक आरोप लगाया है कि बीबीसी एक पार्टी एनडीए के खिलाफ है और आप हमेशा उनके खिलाफ ही रहते हैं। साथ ही कहते हैं कि आपको मेरा पत्र अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आप ये पत्र शायद ही प्रोग्राम में
शामिल बिल्कुल नहीं साहब। लेकिन मैं आपसे चाहता हूँ कि आप अगर कार्यक्रम का उदाहरण देके हमें लिखें कि इस कार्यक्रम में हमने एक खास राजनीतिक पार्टी का विरोध किया या किसी का समर्थन किया, तब जवाब देने में मेरे लिए ज्यादा आसानी होगी। वरना ये कहना कि आम तौर पे हम लोग एनडीए के खिलाफ हैं, मैं तो इसको समझ नहीं पा रहा हूं कि कौन सा ऐसा कार्यक्रम था जिसमें हमने एनडीए की या किसी खास पार्टी की मुखालफत की, विरोध किया।
जी, दो ईमेल्स हैं जो कि एक दूसरे के खिलाफ हैं। अमित पुनिया जो है वो लिखते हैं, बीए फाइनल ईयर का मैं छात्र हूँ, ईमेल जो है पीली बंगा हनुमानगढ़ राजस्थान से लिखी है। ये कह रहे हैं कि मुझे आपके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो कवरेज होती है तमाम खबरों की, वो बहुत पसंद है और बीबीसी का जो विशेष प्रस्तुतिकरण होता है वो भी इनको बहुत पसंद आता है जो हम तमाम विषयों पर करते हैं। लेकिन एक और ईमेल है इरशाद अहमद की जो कि बाराबंकी यूपी से लिखते हैं और कहते हैं कि इन्हें बहुत समस्या है हमारी खबरों के चुनाव और संपादन से। इनका कहना है कि कई बार जो स्थानीय इशू होते हैं वो इतना लंबा खिंच जाते हैं कि पूरा कार्यक्रम उसमें चला जाता है और ऐसा लगता है कि आप कोई रीजनल चैनल सुन रहे हैं, जबकि आप जानना चाहते हैं कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है और वो भी बिना किसी पूर्वाग्रह के।
इरशाद अहमद गणेशपुर बाराबंकी से लिखते हैं। इनसे इरशाद साहब, आपने ये तो जाहिर कर दिया है कि आप न केवल सजग श्रोता हैं, आप में एक कहीं ना कहीं पत्रकार भी छुपा हुआ है और ये मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ इरशाद साहब, कि आप खबरों को बहुत बारीकी से सुनते हैं। मेरा ये कहना है कि कई बार ये होता ज़रूर है कि कोई स्थानीय खबर है, जैसे दिल्ली का ऑड इवन सम विषम कारों वाला जो मसला था उसमें हमने कुछ ज़्यादा ही बीबीसी हिंदी रेडियो के कार्यक्रम प्रसारित हो गए, ये मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि अगर खबर अमेरिका में हो, यूरोप में हो, चीन में हो, ताइवान में हो और भारत में हो या पाकिस्तान में हो, उसको एक पैकेज पूरा आधे घंटे का आपको दिया जाए। उसमें कई बार गलतियां और गड़बड़ियां भी होती हैं, हम कोशिश ये करेंगे कि आगे ना हो।
यहाँ पे राजेश जी जो हमारे साथी हैं जो कि हम लोगों की आवाजें पहुंचाते हैं हमारे श्रोताओं तक, उनके नाम
यानी हमारे स्टूडियो मैनेजर्स,
जो हमारे स्टूडियो मैनेजर्स हैं उनके नाम बहुत कम लोग लेते हैं। एक ईमेल आया है मंटू कुमार का,
पर्दे के पीछे
हमारे हीरोज हैं,
अभी मैं देख रहा हूँ हेमंत कुशवाहा पर्दे के पीछे उधर बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं।
ईमेल में इनके नाम का भी जिक्र है, हेमंत कुशवाहा, देवाशीष कुमार और दीपक जसरोटिया, इनकी वजह से हम निर्बाध और सुचारू रूप से सभा सुन पाते हैं, इनको तहे दिल से शुक्रिया, कहते हैं मंटू कुमार।
मैं हेमंत कुशवाहा को स्टूडियो में बुलाता हूं और वही शुक्रिया अदा करेंगे आपका।
मंटू कुमार जी, जिला मोतिहारी से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम लोगों का जिक्र किया। हम लोग पर्दे के पीछे रहने वाले हैं और हमारा काम ही है कि आप लोगों तक बिना विघ्न के प्रोग्राम जाए जिससे आप बीबीसी को निरंतर सुनते रहे।
और मैंने खास तौर पे मंटू कुमार जी आपकी, आपने इनका जिक्र किया इसलिए मैंने स्टूडियो की दूसरी तरफ से हेमंत को बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत। और मैं स्वाति से ये गुजारिश करूंगा कि अगली चिट्ठी पढ़ें, हमारे पास समय भी अब बहुत कम है।
ये रफीक इब्राहिम परकार का ईमेल है और ये कहते हैं कि उस मुलाकात को सुनकर आपकी वो प्रस्तुति याद आ गई जो अफजल गुरु की फांसी के समय प्रसारित की गई थी, जिसके अनुसार अफजल को भारत की जनता के सामूहिक विवेक को संतुष्ट करने के लिए फांसी दी गई।
ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था, इसमें हमारा कोई अपनी तरफ से कोई विचार नहीं था, लेकिन आपने चिट्ठी लिखी, कार्यक्रम सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि आज चिट्ठियों का ये कार्यक्रम बहुत लंबा हो गया है, फिलहाल इजाजत लेनी पड़ेगी। श्रोताओं नमस्कार।
क्रिकेट और फुटबॉल में मैच फिक्सिंग के किस्से तो आम हैं, लेकिन अब संकेत मिल रहे हैं कि टेनिस की दुनिया भी शायद बेदाग नहीं है। खुद बीबीसी और बसफीड न्यूज़ ने जांच के बाद ऐसा पाया, हालांकि एटीपी के प्रमुख ने इसे सिरे से नकार दिया है। आदेश कुमार गुप्त की रिपोर्ट।
आज से साल का पहला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन शुरू हुआ, लेकिन इसी बीच टेनिस की दुनिया के शीर्ष 50 खिलाड़ियों में शामिल धुरंधरों पर मैच फिक्सिंग या जानबूझकर मैच हारने जैसे आरोप लगने से टेनिस की दुनिया और खेल प्रेमी सकते में आ गए। हालांकि एटीपी यानी प्रोफेशनल टेनिस संघ के चेयरमैन क्रिस केरमोडे ने बीबीसी और वेबसाइट बजफीड न्यूज द्वारा संदिग्ध मैच फिक्सिंग की जाँच को नकार दिया है। उन्होंने कहा कि एटीपी किसी भी नई जानकारी की जाँच करेगा, उन्हें खेल की विश्वसनीयता पर कोई शक नहीं है, शीर्ष स्तर पर टेनिस की दुनिया में की जा रही मैच फिक्सिंग की जांच के सुझावों को देखा जाएगा। दरअसल बीबीसी ने उन खुफिया फाइलों को देखा है जिनमें विश्व टेनिस के शीर्ष मुकाबलों में मैच फिक्सिंग के सबूत हैं। बसफीड के साथ की गई जांच में पता चला कि पिछले 10 सालों में कम से कम 16 शीर्ष खिलाड़ियों के खिलाफ ये शिकायतें दर्ज की गई कि उन पर शक है कि वो जानबूझकर मैच हार रहे हैं। इस तरह की शिकायत विंबलडन के कुछ मैचों से भी संबंधित है, लेकिन शिकायत के बावजूद इन सभी खिलाड़ियों पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई गई। इनमें से कुछ खिलाड़ी ग्रैंड स्लैम खिताब विजेता रहे हैं। बीबीसी और बजफीड न्यूज को जो दस्तावेज मुहैया कराए गए हैं उनमें 2007 की एक जांच रिपोर्ट भी शामिल है। ये जांच एटीपी ने शुरू करवाई थी। इस जांच समिति का काम निकोलाई डेविडेंको और मार्टिन वासलियो अर्गुलियो के बीच हुए मैच में कथित सट्टेबाजी के मामले की जांच करना था। इन दोनों खिलाड़ियों के खिलाफ किसी तरह का सबूत नहीं मिला, लेकिन जांच का दायरा बड़ा करने के बाद कई बड़े खिलाड़ी और सट्टेबाजों के नाम सामने आए। इसे लेकर बजफीड न्यूज की जांच एडिटर हिदी ब्लाके का मानना है,
साल
2008 से ही हमें ऐसी लिस्ट मिल रही है जिसके अनुसार 9 सूचियां ऐसी थी जिनमें संदिग्ध खिलाड़ियों को विंबलडन भेजा गया। हमने देखा कि 16 वही नाम बार बार लिस्ट में आते रहे। इनमें शीर्ष 50 में शामिल खिलाड़ी भी हैं, जिनमें से आधे ऑस्ट्रेलियन ओपन में खेल रहे हैं।
हिदी के शब्द। हालांकि इससे पहले एटीपी के चेयरमैन क्रिस केरमोडे कह रहे थे,
The Tennis Integrity Unit and the Tennis Authorities absolutely reject.
टेनिस संघ इस बात को सिरे से नकारता है कि जांच के सबूतों को दबाया जा रहा है या इसकी जांच ठीक से नहीं की जा रही है।
क्रिस केरमोडे के शब्द। अब देखना है कि ये मामला क्या रंग लाता है।
और सभा के अंत में सुनते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर।
हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या के मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री बंडारू दत्तात्रेय के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व सेनाध्यक्ष परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान की चरमपंथ विरोधी अदालत ने बलूच नेता नवाब अकबर बुगटी की हत्या के मामले में बरी कर दिया है। बीबीसी समाचार।
समय आ पहुंचा है आपसे विदा लेने का। स्टूडियो की कमान थी हेमंत कुशवाहा के पास, रेहान फजल को अनुमति दीजिए। नमस्कार।